તારીખ 6-10-1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 166 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 240
શ્રીમદ રાજચંદ્ર રચનામૃત પત્રાંક 166 સદપુરુષના એક એક વાક્યમાં એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યા છે એ વાત કેમ છે વિચારવા માટે પોતાનો અભિપ્રાય મૂક્યો છે. સત્પુરુષ એટલે જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, વેદાંતની ભાષામાં એને બ્રહ્મજ્ઞાન કહે છે. મિશ્રાજી કે થોડે ભાષા કા પ્રયોગ કરેંગે, ફર્સ્ટ ટાઈમ આયા ને, જૈન પરિભાષા કોઈ સમજ મેં આયે કોઈ નહીં આયે, તો સત્પુરુષ માને જિસકો આત્મજ્ઞાન હુઆ હૈ, પરમ બ્રહ્મ કા જ્ઞાન હુઆ હૈ, એને જિસકો સ્વાનુભૂતિ હુઈ હૈ, ઉસકા અનુભવ જ્ઞાન. જ્ઞાન દો પ્રકાર કા હૈ, એક જાણકારી વાલા હોતા હૈ, એક અનુભવ વાલા હોતા હૈ. જૈસે હમ ગાડી ચલાતે હૈ, પહેલે સમજ લેતે હૈ કે કૈસે ચલાના, ફિર ઉસકી પ્રેક્ટિસ કરકે ઉસ ચલાને કી ક્રિયા કો અનુભવ મેં લેતે હૈ, ઓર તભી હમકો ઉસકા પરિજ્ઞાન હોતા હૈ. ઇસ તરહ સે તો કહેતે હૈ કે જો સત્પુરુષ હૈ ઉસકે એક વચન મેં, એક વાક્ય મેં, વન સેન્ટેન્સ, ઓર કભી ઉસકે એક શબ્દ મેં ભી અનંત આગમ. આગમ માને શાસ્ત્ર, અનંત શાસ્ત્ર રહે હૈ. કોઈ વાત કૈસે હોગી, એસા એક પ્રશ્ન રખા હૈ, તો વો વાત ઉસકા વિચાર કરના હૈ હમે સ્વાધ્યાય કે દોરાન, કે એ વાત કૈસે હોગી, કે જો આત્મા હૈ ઉસકા જો આત્મજ્ઞાન હૈ વો પ્રમાણ જ્ઞાન હૈ, ઉસકો શ્રુત જ્ઞાન પ્રમાણ કહેતે હૈ. ક્યા કહેતે હૈ? શ્રુત જ્ઞાન પ્રમાણ કહેતે હૈ. ઉસકે અંશ હોતે હૈ, તો અંશ કો નય કહેતે હૈ. નય માને દેખને કા દ્રષ્ટિકોણ, વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ધ થિંકિંગ, કુછ ને કુછ એંગલ સે દેખના, કુછ ને કુછ પર્ટિક્યુલર આસ્પેક્ટ કો પકડ કરકે દેખના, પર સારી ચીજ કો ખ્યાલ મેં રખના. સારી ચીજ કો ખ્યાલ મેં રખતે હુએ કિસી ચીજ કો કિસી એક એંગલ સે દેખના, ઉસકો કહેતે હૈ નય. શ્રુત જ્ઞાન મેં એસે અનંત નય સમાવિષ્ટ હૈ. કિતને હૈ? સમાવિષ્ટ હૈ. પર જીતને ભી શાસ્ત્ર વિસ્તાર હૈ, જીતને ભી શાસ્ત્ર વિસ્તાર હૈ, તો ઇસી નય કા હી વચન વચન હૈ. શ્રુત જ્ઞાન હૈ, વો જ્ઞાન કી અવસ્થા હૈ. આત્મા મેં જ્ઞાન ગુણ, જ્ઞાન શક્તિ હૈ, ઇસકી પ્રોપર્ટી હૈ, प्रज्ञानम ब्रह्मा, वेद का एक ट्रेडमार्क वचन है सामवेद, प्रज्ञानम ब्रह्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान की शक्ति है, बेहद ज्ञान उसमें भरा हुआ है, लेकिन विकार और विकृत भावों में संसारी जीव रचा पचा है, इसलिए वो ज्ञान को आवरण आ गया है, ज्ञान को ज्ञान ढक गया है, खुला नहीं है। तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से वो खुलने लगता है। तो उसके ज्ञान में परम ब्रह्म आने से उसका ज्ञान उतना महान हो जाता है कि उस ज्ञान के बैकग्राउंड से निकले हुए जो वचन है वो तो वचन सारा पूरा ज्ञान को लक्ष्य में ख्याल में रख करके एक वचन निकलता है, और कभी एक शब्द निकलता है तो भी सारे ब्रह्म ज्ञान को लेकर के शुद्ध ज्ञान में रह करके एक वचन एक शब्द निकलता है। तो जो वचन है उसको शब्द नहीं कहते हैं, और ज्ञान की अवस्था को ज्ञान नहीं कहते हैं, और अनंत नयों का समुदाय को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ऐसा आत्मज्ञान है उसको आत्मज्ञान कहते हैं, और सभी शास्त्र इसमें से निकल निकल करके लिखा गया है। जितने भी शास्त्र हैं जगत में, अनादि से जितने भी शास्त्र लिखे, जिन जिन महात्माओं ने लिखे, तो सब आत्मज्ञान में से लिखे। इसलिए आत्मज्ञान में सभी शास्त्र समाविष्ट है, और आत्मज्ञान पूर्वक निकले हुए वचन में भी ये सब बात आ जाती है, यानी उसकी सब संधि होकर के बात आती है। भले ही बात एक दृष्टिकोण से चली हो, परंतु सभी गुण धर्म का कोऑर्डिनेशन होकर के उस बात को वो पुटअप करते हैं। इस तरह से बात चलती है आत्मज्ञान की या सत्पुरुषों की, इसलिए इसके वचन में अनंत आगम रहे हैं, यही कारण है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अर्थघटन हुआ इस बात का। अब बात करें हमारे प्रयोजन की, कि इन सब बातों से हमारे क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, कि अगर हमें आत्मज्ञानी ज्ञानी पुरुष से बहुमान है, तो उस ज्ञान से निकले हुए वचन प्रति कितना बहुमान होना चाहिए, ये हमारा प्रयोजन का विषय है। कि इसके एक एक वचन में, एक एक वाक्य में अनंत शास्त्र भरे हैं, गर्भ में इसके, गर्भ में इसके बैकग्राउंड में अनंत शास्त्र रहे हैं, इतनी महिमा हमको सतपुरुष के एक वचन में और एक शब्द में होनी चाहिए या आनी चाहिए। मर्म भरा पड़ा है, तो वो मर्म पूर्वक जो बात निकली है उस बात का हमें इतना बहुमान आना चाहिए। इतना बहुमान आने से हमें हमारा मोह जो है, यानी मायावी सुख है, मायिक सुख बोलते हैं, इसके प्रति हमारा जो खिंचाव है वो ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा झुकाव इस तरफ हुआ तो उस तरफ नहीं रहेगा, दोनों परस्पर विरुद्ध है। इसलिए तो हमारा प्रयोजन वहाँ है, ये हमें फायदा का विषय है। इतनी बात कर करोगे, एक पांच वचनामृत उन्होंने लिखे हैं, वो कैसे हैं कि निम्न वाक्य प्रत्येक मुमुक्षुओं को मैं असंख्य पुरुषों सत्पुरुषों की सम्मति से मंगल रूप माने हैं, जो निम्न पांच वचन लिखे हैं कि प्रत्येक मुमुक्षु, मैंने जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति मैंने आत्म सुख की प्राप्ति की इच्छा है और संसार के दुखों से छूटने की इच्छा है और संसार के दुख के कारणों से छूटने की इच्छा है, ऐसे जो मुमुक्षु है उसको, उसका मंगल करने वाला, मैंने कल्याण करने वाला ये वचन है। और मेरे वचन में असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति है। मैं अकेला ही कहता हूं वो बात नहीं है, असंख्य महात्माओं ने यही बात कही है कि हम जानते हैं। आप तो भी कैसे जानते हैं कि ये जो लिखने वाले श्रीमद राजचंद्र जी थे वो आत्मज्ञानी तो थे ही, लेकिन बचपन से उनको पूर्व भव का भी ज्ञान हो गया था 7 साल की उम्र में। उस जमाने में उसकी ज्ञान प्रज्ञा बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि 7 साल की उम्र में जब उसको स्कूल में बिठाया गया तो 1 साल में 7 स्टैंडर्ड को पास किया। 1 साल में 2 स्टैंडर्ड को पास करने वाले तो हमारे यहाँ मिलते हैं, तो हमारे परिवार में भी कुछ लड़के 2 स्टैंडर्ड कर लेते थे 1 साल में, 6 महीने में 1 स्टैंडर्ड, दूसरे 6 महीने में दूसरा, ऐसे। तो उस जमाने में 7 स्टैंडर्ड थे और कोई आगे पढ़ाई, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं था 100 साल के पहले की बात, तो गांधी जी के जमाने में है, गांधी जी के गुरु है। गांधी जी जब जब उज्जैन में आते थे तो उनका संपर्क करते थे, उनके साथ जो भी अपने लायक बात है वो ग्रहण करके सुधार कर लेते थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया है। तो इतने तेज थे, बाद में तो सस्तावधान किए हैं और बाद में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। तो पूर्व भव के कहीं स्मृतियों होने से कारण से उन्होंने अनेक सत्पुरुषों के वचनामृत को भी उसके स्मरण में है, बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, करीब करीब विश्व के सभी धर्ममत के शास्त्र भी उन्होंने पढ़े थे। और इसलिए अनेक सत्पुरुषों की सम्मति अपने वचन में है, ऐसा उन्होंने एक आधार दिया है और मोक्ष के सर्वोत्तम कारण रूप माने भी हैं। और मोक्षों को मोक्ष होना है तो ये मोक्ष का उत्कृष्ट कारण है, ये भी उन लोगों ने, सभी सत्पुरुषों ने माने हैं, हम भी वही कहना चाहते हैं। नंबर 1, मायिक सुख की सर्व प्रकार की वांछा, कभी भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं। अगर इस संसार से छूटना हो तो जो भी मायिक सुख मैंने, भौतिक सुख है वो मायिक सुख है, मायिक सुख मैंने मायावी सुख, मायावी सुख मैंने नकली सुख, वास्तव में जो सुख नहीं है, असली सुख नहीं है, उसको माया, मायिक सुख यानी मायावी सुख कहते हैं। आप कहेंगे कि मायावी कैसे, हमको तो मिठाई खाने में सुख लगता है, हमको तो फलाने फलाने में सुख लगता है। तो देखो, अगर तुमको सुख की प्राप्ति हो गई होती तो तुम उसको छोड़ते नहीं। तुमको लड्डू अच्छा लगता है, मेवा मसाले वाले, सुखरूप लगता है, तो फिर लड्डू खाते ही रहो, मन, लेकिन एक दो तीन चार फिर तोबा क्या आएगा, कहाँ गया सुख वो? अगर वास्तव में एक लड्डू खाने में सुख लगा, दो लड्डू खाने में दुगुना होना चाहिए था, फिर चार लड्डू खाने में चार गुना, दस लड्डू खाने में दस गुना, लेकिन परिस्थिति उल्टी निकली, खाते खाते परिस्थिति उल्टी निकली। सभी में आप थक जाओगे, टीवी देखते देखते भी थक जाओगे, एक घंटा दो घंटा चार घंटा छह घंटा आठ घंटा, फिर आपका दिमाग थक जाएगा, देखते देखते थक जाएगा। तो ये वास्तव में जो सुख होता तो ये परिस्थिति नहीं रहती, ज्ञानियों ने उसको काल्पनिक सुख, सुख की कल्पना, सुखाभास और मायिक सुख कहा है, मायावी सुख कहा है। उसकी जीव को वांछा रहती है, इसकी इच्छाएं उसको चलती रहती है, क्योंकि उसने सही सुख माना है, वास्तविक सुख माना है, सच्चा सुख मान लिया है, इसलिए इसकी इच्छाएं होती रहती है। लेकिन उसका स्वरूप समझ करके कि ये मेरे साथ धोखाबाजी हो रही है, संसार में कोई लेन देन में भी जाली नोट दे देगा, हाँ तो अच्छा हमको धोखा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। यानी कोई धोखाबाज आदमी पकड़ा जाता है तो कहते कि हम कोई कम अक्कल थोड़ी ना है, तुम्हारी होशियारी इधर थोड़ी काम में आने आएगी, हमको तुम धोखा नहीं दे सकते, अपना बुद्धि का अहम आएगा। लेकिन यह कदम कदम पर धोखा खाता है पांचों इंद्रियों के विषय में, वहां उनको कुछ नहीं लगता। अगर धोखाबाज को मिल जाता है तो बहुत उनको ये होता है कि तुम हमारी बुद्धि को चैलेंज करने को आया क्या, क्या समझते हो तुम, इतने कम बुद्धिमान, मंद अकड़े थोड़े हैं, अकलमंद है कैसे लेंगे हाँ। लेकिन यहाँ कदम कदम पर धोखा खाते हैं, ना वाकई ही मंद अकल है, अकलमंद होते कोई बात नहीं होती। इसलिए उसका मायावी सुख का, सुखाभास का स्वरूप समझ करके उसकी इच्छा, उसकी वांछा छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी चाहिए। इसके बिना ये संसार का कर्म बंधन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस सुख लेने को आकर्षित होता है, आसक्ति होती है, तो उसको नया कर्म बंधन हो जाता है उसी काल में। तो उसका क्या साइंस है इसके पीछे, इच्छा के पीछे क्या साइंस है, इस सुख लगने के पीछे क्या साइंस है? अगर वो सुख नहीं है तो वो समझने के पीछे कौन सा साइंस है? ये सब बात हमें व्यवस्थित रूप से समझनी होगी, तब सहज रूप से वो वांछा मिटेगी। वरना ऐसी वांछा मिटना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। क्यों? तो ये बात सुनकर के ये आर्गुमेंट हो सकती है कि ठीक है, ये सुख तो सुख नहीं है, धोखाबाजी होती है, समझते हैं, फिर भी हमारी इच्छा हुआ करती है, उसको रोक नहीं सकते, बियॉन्ड कंट्रोल है, क्या करें, ऐसा सुनने से थोड़ी ना इसका कोई रास्ता मिलता है क्या? सुन लिया, समझ लिया, फिर क्या, हमारी परिस्थिति तो वो क्यों हो रही। इसलिए ये सभी बातों के पीछे कौन सा विज्ञान है, कौन सी गिनती है, मैंने मैथमेटिक कौन सा है, और इसमें अपना कल्याण और अकल्याण, सुख और दुष्कर, दुख का जो प्रॉब्लम है उसका विवेक करना, वो जिसको न्याय कहते हैं। हम अपने को अन्याय करके दुखी होते हैं। अगर हम अपने आप को न्याय करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, इसलिए उसको न्याय कहते हैं। तो ये तो उपदेश हुआ कि इच्छा को छोड़ देना, मायावी सुख की इच्छा को छोड़ देना, ये एक उपदेश हुआ। लेकिन इस उपदेश के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, मैथमेटिक क्या है, ये सब बातों को हमको समझना चाहिए, व्यवस्थित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश इसका सपोर्ट में चला है। जो भी उपदेश देते हैं ज्ञानी पुरुष, ये ज्ञानी पुरुष के ज्ञान में तीनों बात है, तब वो उपदेश देते हैं और तब वो उपदेश देने के अधिकारी है। नहीं। तो इसका उपदेश ये सब तीनों बातों से सपोर्टेड है। तो जिसको ये उपदेश ग्रहण करना है उनको भी ये तीनों बात समझनी चाहिए, जब वो इच्छा को टाल सकेगा, वरना ये इच्छा बियॉन्ड कंट्रोल चलती रहेगी।
मुझे समझना ही नहीं, विश्वास करना चाहिए।
तो जब ये इसके जो साइंस को समझेंगे, तीनों बातों को समझेंगे, तो विश्वास आएगा। विश्वास ऐसे आएगा कि इसका वो प्रयोग करेगा, प्रयोग करते ही उसको इसका फल उसी वक्त मालूम पड़ेगा।
नहीं, जो उपदेश देते उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करके फिर
प्रयोग करते हैं। हाँ, वो तो पहले तो बात वो है कि किसी भी सत्पुरुष के वचन पर विश्वास रख करके, फिर उसका विचार करके, फिर उसको समझ करके, फिर उसका प्रयोग करके उस बात को अंगीकार करना चाहिए। दृष्टांत ले कि हमको हलवा अच्छा लगता है, और आजकल मूंग की दाल का हलवा भी अच्छा बनता है, सिस्टम हो गई है ना, जुमन होता है शादी वगैरह में तो बनाते हैं, मेवा मसाला डालते हैं बराबर। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हलवा अच्छा है, इसलिए अधिक से अधिक अपनी कैपेसिटी होवे, इससे भी थोड़ा अधिक खा लेना चाहिए। ठीक है, रोजाना हम 4-5 रोटी खाते हैं, तो हलवा हम 7-6 रोटी के बराबर में खा लेंगे, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। ज्यादा खाने में तो मजा नहीं है, इससे ज्यादा खाने में तो मजा नहीं है, क्योंकि फिर तो वॉमिट होगा, या तो इनडाइजेशन होगा, या कुछ न कुछ गड़बड़ी, कॉन्स्टिपेशन टट्टी लग जाना, कुछ न कुछ हो जाए। अब हमको साइंटिफिकली इस बात को विचार में लेना है, हलवा भी एक सब्सटेंस है, किस चीज से बना हुआ है, कि कुछ परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक है, अनाज के रूप में, मूंग के रूप में, घी के रूप में, शक्कर के रूप में, जो कुछ जड़ पार्टिकल्स थे, क्या थे, जड़ पार्टिकल्स थे, चैतन्य नहीं है उसमें, उसमें उसका साइंस देखा जाए तो उसमें कोई सुख नाम का गुण धर्म नहीं है। हलवा खुद सुख स्वरूप नहीं है, कईयों को नहीं भाता है, अगर होता तो सबको भाता है, लेकिन कईयों को नहीं भाता है। और उसमें कोई सुख नाम का गुण नहीं, सुख नाम की अवस्था नहीं, सुख देने की कोई ताकत नहीं, पर में कोई सुख नाम की चीज उसमें से आकर के जीव को मिलती हो, ऐसा भी कोई बनता प्रक्रिया नहीं बनती, ये इसका साइंस है। अगर हमको वो साइंस समझ में आएगा तो तो उसको देखते ही हमारा मिसकॉन्सेप्ट छूट जाएगा कि ये सुख का कारण है, सुख का देने वाला है, मजा का कारण है, छूट जाएगा। उसी वक्त खाते वक्त हम उसका उसको देखें कि इसमें सुख का है नहीं, हम कैसे मानते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि धोखा हो गया, लेकिन पहले क्यों नहीं सोचा। तो सुख नहीं मिला तो लगा कि ये धोखा हो गया, लेकिन उसका विज्ञान को हम समझते हैं, कल्पना कर बैठते हैं। यही कल्पना वास्तविक वस्तु स्थिति से विपरीत है, और यही विपरीतता को हम सही मानते हैं तो उसको इस मान्यता को, उस परिणाम को, उस भाव को विकारी भाव कहने में आते हैं, और ये दुखदायक है। ये सुख का कारण तो है नहीं, ये दुख का कारण है। इसलिए जिसको आत्म शांति चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, उनको इस प्रकार की वांछा छोड़ने के लिए व्यवस्थित रूप से इस विषय में हम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक पेट भरने के लिए हमको 20-22 साल केजी से लेकर स्कूल में, कॉलेज में काफी परिश्रम करके रात दिन, कभी कभी छोटी बांध करके पढ़ना पड़ता, रात को पढ़ाई करनी पड़ती है, छोटी बांध करके समझते नींद नहीं आ जाए। प्रवचन में भी नींद आती हो तो छोटी बांधना, जिसको भी प्रवचन में नींद आ जाए उनको छोटी बांध लेना चाहिए, नहीं चले दर्शनों का आवरण आ जाएगा। तो बात वो है कि पेट भरने के लिए हमको उतना समय और शक्ति और पैसे का खर्च करना पड़ता है, आत्म शांति के लिए उतना समय, शक्ति और पैसे का खर्च नहीं करना पड़ता है। इतनी सुविधा है, फिर भी हम उपेक्षा रखते हैं, उदासीन होते हैं, अपेक्षा नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो जब से इस वचन का श्रवण किया, सुना, तब से ही वही क्रम का अभ्यास करना, मैंने इस प्रकार की इच्छा सहज कैसे नहीं हो, ऐसा अभ्यास करना, मैंने उसके साइंस को समझना, उसके पीछे न्याय क्या है, यानी सुख दुख कैसे होता है उसको समझना, और उसके पीछे कौन सी गिनती है, कैलकुलेशन क्या है, वो भी समझना, यही योग्य है ऐसा समझना। आत्मा भी एक चैतन्य पदार्थ है, ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, सच्चिदानंद घन बोलते हैं। जैन में भी वो परिभाषा है, वेदांत में भी वही परिभाषा है। ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद घन। सत में त्रिकाल अस्तित्व रखने वाला, कभी मरने वाला नहीं, शाश्वत पदार्थ। सच्चित मैंने ज्ञान और दर्शन, ऐसी शक्ति। आनंद मैंने आनंद की शक्ति। घन मैंने बहुत घनिष्ठ। तो दवाई में भी बोलता है कि सुदर्शन घनवटी, घन मैंने कॉन्सेंट्रेटेड दवाई। ऐसे ये शक्तियां बेहद भरी है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि शक्तियां, बेहद अनंत शक्तियां, ऐसे बेहद भरी है। उसका भी एक साइंस है, और परमाणु का भी साइंस है, तो भौतिक साइंस को अपन समझते भी है, लेकिन जीव और परमाणु के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, कौन सा संबंध है कौन सा संबंध नहीं है और आपस में उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है और हमारे सुख दुख के प्रॉब्लम का इसके साथ क्या संबंध है, हमारा सुख दुख रिलेटेड है कि नहीं है, कैसे रिलेटेड है। रिलेटेड है क्योंकि कुछ चीज देख करके हमको सुख होता है, कुछ परिस्थिति में हमको दुख होता है, तो हमारे से रिलेटेड है। ये सब दोनों बात का साइंस समझ करके अगर इस बात को समझा जाए तो साइंटिफिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है सुख दुख का, वो बात गारंटेड है। इसलिए ये धर्म है कि कोई ऑर्थोडॉक्सी नहीं, विधि रीत रिवाज या ब्लाइंड फेथ का विषय नहीं है, ये एब्सोल्यूट साइंस है। इसलिए उनको बुद्धिमानों को सही रूप से उसका अभ्यास करना चाहिए और अपने आप को सुखी ही। सबसे पहले तो आपका भय चला जाएगा क्योंकि सच्चिदानंद घन है आत्मा, तो सत मैंने शाश्वत रहने वाला। अगर मुझे कोई बाधा पहुंचा सकता है तो मेरा सत का नाश हो जाएगा, असत हो जाएगा, लेकिन मैं तो सत स्वरूप ही हूं, त्रिकाल रहने वाला हूं, मेरा अस्तित्व का कोई नाश नहीं कर सकता। इसका विश्वास, इसकी प्रतीति जब अनुभव से आती है तब किसी हालत में किसी परिस्थिति में मेरे सत को कोई छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, बाधा नहीं कर सकता। ये बात प्रकट रूप से अनुभव गोचर होती है और इसी कारण से किसी परिस्थिति में भय आता ही नहीं। मृत्यु का भय नहीं आता तो बाकी के भय तो इसके नीचे वाले हैं और तो कोई आएगा ही नहीं। राजा मर गया सैनिक तो वैसे ही भागने लग जाएंगे और हमारी प्लानिंग जो है व्यू है लड़ने का ये राजा को मारने का है। कई प्रकार के दुश्मन हमारे भीतर में बैठे हैं, उसमें राजा कौन है कि मोह राजा। उस मोह राजा का साइंस क्या है वो भी समझे, उसको मारने का साइंस क्या है और कौन सा व्यू है वो भी समझे। बस आपके व्यवस्थित अभ्यास, व्यवस्थित समझदारी आप उसको प्रयोग करें, उसका समझ का प्रयोग करें, काम हो जाएगा। दूसरा वचन, किसी भी प्रकार से सदगुरु की खोज करना। सदगुरु मैंने आत्मज्ञानी सत्पुरुष, इसकी खोज करना क्योंकि ये विद्या इनके पास है। हमको पहला आंकड़ा एक भी गुरु के बिना सीखने को नहीं मिला है तो ये तो ब्रह्म विद्या है। उसको तो उसके लिए तो उसके जो जानने वाले अनुभव संपन्न है वो चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए।
वैसे जो पुण्य के उदय से मिला है उसको मिला नहीं देना चाहिए।
पुण्य के उदय से मिला है उसको मिला कहा जाता भी है और नहीं मिला भी कहा जाता है। मिला तब कहा जाता है कि उसका सही लाभ उठा ले तो, और मिलने पर भी उसका कोई लाभ नहीं उठाया तो मिला नहीं मिला एक ही बात हो गई, इसलिए नहीं मिला। तो दोनों बात है, खुद के पर आधारित है सब बात। किसी भी प्रकार से सदगुरु की खोज करना, खोज करके इसके प्रति तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना। अर्पण करना नहीं लिखा है, अर्पण बुद्धि करना, वरना ये कहेंगे अरे आप तो सदगुरु हमारा तन मन धन लेने वाले हैं, हमको तो नहीं देना है। ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। उसके प्रति मोह जो है, तन मन धन के प्रति जो मोह है, वो छोड़ना, छोड़ने का अभिप्राय बनाना, उसको वह कहते हैं समर्पण किया। पर आत्मा से अर्पण बुद्धि करना, राग से नहीं, आत्मा से, अंतर से अर्पण करना। और जहाँ अपना आत्मता, आत्मापना हो, उसको भी अर्पण कर देना। जैसे कि प्रकृति, जीव की प्रकृति छोड़ना, छूटना बहुत मुश्किल है। लौकिक में तो कहावत है कि प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, मतलब प्रकृति मिटती नहीं, पर प्रकृति मिटाने का कोई इलाज विश्व में नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये विद्या ऐसी है कि जिसमें प्रकृति को भी मार सकते हैं, प्रकृति को भी मिटा सकते हैं, ऐसी अध्यात्म विद्या है ये। तो इसकी दवाई है ज्ञान। क्रोध मान माया लोभ चार प्रकृति है, फिर पिता में बहुत सी प्रकृति है, लेकिन ये सब इनके संतान है। ये चारों प्रकृति को मारने का एक ही साधन है ज्ञान। ज्ञान से उसको मार सकते हैं, सही ज्ञान। सही ज्ञान मैंने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मैंने जीव और चैतन्य, जड़ और चैतन्य का विज्ञान और इसका अनुभव, उसको कहते हैं ज्ञान। उसे प्रकृति भी मर सकती है। लेकिन यहाँ तो बुद्धि करना, मैंने अभिप्राय में तैयारी करना कि मेरे को मोह भी तन मन धन से नहीं करना है और मेरी प्रकृति भी मुझे छोड़ना है। मेरे को प्रकृति दुखदायक है, क्रोध होने से दुख होता है, अशांति होती है, हमें शांति चाहिए। इसलिए पहले ये अभिप्राय रखना कि अगर कोई गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, तो हमको इतनी तैयारी में आना है अभिप्राय से। पहले अभिप्राय की बात है, और उसकी आज्ञा का सर्व प्रकार से निशंकता से आराधन करना। और हमारे जो जो भी वो कहें, जो भी आज्ञा करें, वो हमको शिरोधार्य करना है, उठाना है, उस पर पैर रख कर नहीं चलना है।
तभी वो अंतकरण शुद्ध होगा।
हाँ, तभी तो उसने उसको गुरु रूप में माना है। जो आज्ञा दें, वो आज्ञा का पालन नहीं करे, तो फिर गुरु को गुरु के रूप में कहाँ से माना है, नहीं माना है। ये बात है। और संसार के सभी प्रकार के दुख से छूटना हो तो मानना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज होते हैं तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं डॉक्टर के? शरीर रोग मिटाने के लिए हमको डॉक्टर के पास सरेंडर होना पड़ता है। ICU में भेज देते हैं, सरेंडर होना पड़ता है कि नहीं? तो ये आत्मरोग है, भवरोग है, संसार रोग है, उसको छुड़ाने के लिए हमें जो भी गुरु हमारे लायक आज्ञा देते हैं, उनको हमें मानना चाहिए। और तभी सर्वमायिक वासना का अभाव होगा, ऐसा समझना। और ये जो माइक सुख की वासना है, वांछा है, वो वासना है। वासना इसलिए बोलते हैं, वो बार बार वो इच्छा हुआ करती है। जो इच्छा बार बार होती है उसको वासना बोलते हैं। तो इससे छूटने का, उसका अभाव करने का कभी बनेगा, अगर हम उसके कहीं मानेंगे तो।
ऊपर एक एक वाक्य में अनंत आगम है। आगना से अनंत आगम
तो वो क्या अनंत नहीं की संधि लेकर के वो बात आती है। एक वचन जो हमारे लिए कहते हैं वो अनंत नहीं की संधि लेकर के कहते हैं, इसलिए उनकी बात को लाइटली नहीं लेना है, गंभीरता से उसको ग्रहण करने की तैयारी होनी चाहिए। तीसरा, अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया, अनंत बार विद्या अनेक विद्याओं का अभ्यास किया, सीखे मैंने अनेक प्रकार की विद्याएं, सीखे मंत्र तंत्र जंत्र ज्योतिष सब सीखे, अनंत बार जिंदिक्षा त्याग किया, सब हजारों रानियों को छोड़ करके राजा त्याग कर देता है राजपाट का, ऐसा भी हमने किया है अनंत बार, और साधु बन करके जंगल में चले गए। और अनंत बार आचार्यपना प्राप्त किया, गुरु भी बन गए दूसरों को समझाने के लिए, जो बात समझी है तो दूसरों को समझाने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत किया। मैंने धर्म के क्षेत्रों क्षेत्र में सभी प्रकार के साधन तो अनंत बार बहुत किए हैं, अब क्या नहीं किया जिस कारण से हमारा परिभ्रमण संसार का जन्म मरण नहीं छूटा। मात्र सत मिले नहीं, क्या लिखे पहले क्या लिखा, सत मिला नहीं, सत मैंने सत पुरुष ज्ञानी पुरुष वो नहीं मिले, पर पुण्य योग से मिले, कुछ ध्यान नहीं दिया तो मिले ही नहीं ऐसा कहने में आता है। ऐसे तो मिले हैं पुण्य योग से तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उपेक्षा रखी तो मिले ही नहीं। और सत सुना नहीं, उन्होंने जो कहा वो सत था, वो सत्पुरुष थे, उनके वचन भी सत थे, तो हमें सुना नहीं, यानी सुनने में ध्यान दिया नहीं, और सबका श्रद्धा नहीं किया और विश्वास नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। श्रद्धा में विश्वास पूर्वक स्वीकृति आती है, वो भी हमने नहीं किया। और ये मिलने पर, ये सुनने पर और ये श्रद्धा होने पर ही संसार से छूटने की बात का आत्मा से भंकार, भंकार माने गूंज आएगी, आत्मा में से आवाज आएगी कि अब तुम छूट जाएगा, अब तेरा संसार परिक्रमण मिल जाएगा, तुम्हारा तेरा मोक्ष हो जाएगा। जब कोई तुमको सत्पुरुष मिलेगा, उनकी बात को तुम ध्यान से सुनेगा और तुमको विश्वास आएगा, स्वीकार होएगा, तो तुम्हारे आत्मा में से एक गूंज आएगी, आत्मा की आवाज आएगी। मतलब वो है, ठीक है, जब ऐसी आवाज आती है तब सब मिला, सब सब सुना और सबकी श्रद्धा हुई, ऐसा लेना। ये बात लिखने वालों ने अपने अनुभव से कही है, पूर्व भाव में उनको तो स्मरण है, पूर्व भाव का उनको कोई सत्पुरुष मिले थे, वो 194 पत्र में वो कहेंगे, 166 है 94 में कहेंगे वो बात, तो उनको मिले थे और उस बात का उसको अनुभव हुआ कि आत्मा में सेवा जाए कब में छूट गया, उसकी बात पर ध्यान दिया, उसका श्रद्धान हुआ, स्वीकार हुआ, उसका प्रयोग किया और उनको आत्मा में सेवा जाएगी कि मैं। पर ये सबकी आवाज होने से कभी असत नहीं होती। क्या सबकी आवाज होने से कभी असत नहीं होती, असत नहीं होती। मुक्ति तो बाद में होगी, मोक्ष तो बाद में होगा, लेकिन इसकी प्रतीति, इसका विश्वास, इसकी खातरी, इसका साक्षी भाव इधर आ जाएगा सत्पुरुष मिलने पर। इसलिए ऐसा होने वाले का हौसला बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है और उसका पुरुषार्थ तेज होता है। दोनों एक ही बात है। अपेक्षित बात है, छूट गया वो अपेक्षित बात है, कुछ बंधन तो है
अंदर से तो आता है क्योंकि आज तक
लेकिन वो इसका मतलब बात एक ही इसलिए कि भावी में अल्पकाल में छूट गया तो भावी नैगम ने से बोला जाता है कि मैं छूट गया, इसलिए एक बात है। एग्जैक्ट परिस्थिति में तो कुछ बंधन है और ये पूर्व कर्मकृत है और वो भोगने भी पड़ेंगे, लेकिन उसमें कोई रंज नहीं है। तो वो तो प्रामाणिकता की बात है कि हमने कुछ देनदारी किया है तो उसको चुकाने में तो हम नाराज हो जाए, नाराज होने का कोई कारण नहीं रहेगा। अब तो ताकत आ गई है, देनदारी की चिंता किसको होती कि जिसको पैसे चुकाने की ताकत नहीं हो, लेकिन जिसको बहुत पैसा आ गया है, मामूली देनदारी है, बुला बुला कर दे देगा, तो तुम आ जाओ, हमारे वही खाता बोलता है कुछ रह गया है, ले जाओ तुम, हमको सब साफ करना है, चुकतु करना है। और ऐसे चुकतु करते हैं तब तो मोक्ष होता है। इसलिए वो देनदारी का कोई टेंशन नहीं है, इस कारण से छूट गया ऐसा भी बोलने में आता है, वो अपेक्षित बात है। मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं, वो तो क्या है, उत्साह बढ़ जाता है तो ऐसा आ जाता है कि मैं छूट गया, तो उत्साह में वो बात आ जाती है। मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं परंतु आत्मा में है, और मार्ग को जिसने पाया है, क्या लिखा है,
मार्ग को प्राप्त पुरुष मार्ग को प्राप्त कराएगा।
मतलब जो इस विषय में अनजाने हैं तो कहाँ से मार्ग प्राप्त कराएंगे, कैसे कलकत्ता का मैं अनजाना हूँ तो मैं किसको कैसे रास्ता बताऊंगा, कब इधर से उधर जाना, मैं तो जानता नहीं। ये लोग तो गुजरे हुए हैं इस मार्ग से, इसलिए जिसको मार्ग प्राप्त हुआ है वही मार्ग प्राप्त करा सकता है, दूसरा नहीं करा सकता है। और वो मार्ग आत्मा में है वो वही कहेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि तुम इसको छोड़ो, तुम पैसे को छोड़ो, तुम पत्नी को छोड़ो, तुम घर को छोड़ो, तुम इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कहेंगे कि मार्ग तुम्हारे आत्मा में है, ये तो सब छूटे हुए ही है, तुम अपना ममत्व को उठा लो, ये तो अपने में है, ये तुमको कहाँ चौटे हैं, तुम उसको चौटे हो, कौन किसको चौटा है, खुद चौटा है, चौटता कौन है, चिपकता है तो खुद ही, ये मेरे वो मेरे वो मेरे वो मेरे वो मेरे, वो तो बेचारे जानते भी नहीं, जो जड़ पदार्थ है जिसको वो मेरे मेरे करता है वो तो जानता भी नहीं कि मैं किसका हूँ, आज इधर है कल उधर है, वो तो इसको कहाँ पता है। मोक्ष का मार्ग बाहर है, वो बाहर नहीं, मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं परंतु आत्मा में है। क्यों, कि बंध भी आत्मा अपने परिणाम से करता है। बंध कहाँ करता है, अटैचमेंट कहाँ है, अपने भावों में, तो डिटैचमेंट भी वहाँ ही करना पड़ेगा ना, जहाँ गांठ है वहाँ खोलनी, गांठ इधर है खोले उधर, जैसे तपस्या करने वाला उपवास करता है तो देह दमन तो होता ही है, उसमें भूख लगती है, सहन करता है। अब अपराध करता है आत्मा तब डंडा मारता है देह को, तो न्याय की बात तो होनी चाहिए ना। एक सर्प था तो किसी को काट करके अपने दर में चला गया, पीछे देखने वाला डंडा लेकर के उसको दर को मारने लगा, इसके दर को मारने लगा। सर्प को क्या होगा, कुछ नहीं, तो बाहर निकल के फिर दूसरे को काटेगा, दर को मारने से क्या फायदा होगा। इसे शरीर को दंड देने से क्या फायदा, अपराध तो आत्मा करता है, उसको तो देखता नहीं है क्या कैसे अपराध करता है, क्यों किया है, इस अपराध को कैसे तोड़ना वो नहीं देखे। और छोड़ो आहार को, खाना मत दो उसको, किसको गड़बड़ है। ऐसे लोग भूलते हैं, तो कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं है, आत्मा में है, और जिसने वो मार्ग पाया है वही प्राप्त कराएगा। अनजाना है तो अंधे के समान होता है, वो तो कुछ नहीं बता सकेगा। दो अक्षर में मार्ग रहा है, म और ग, अक्षर तो दो ही है, ज्यादा से ज्यादा गिनती करे तो ढाई है, रे अर्धा है, ढाई अक्षर में मार्ग रहा है। और अनादि काल से इतना सब कुछ किया, क्या किया, शास्त्र पढ़े, विद्या अभ्यास किया, दीक्षा लिया, त्याग किया, आचार्य हो गया, इतना सब किया, फिर भी वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करना है। तो पिन पॉइंट बात वो बात रखी उन्होंने कि शास्त्र पढ़ने वाला, त्याग करने वाला, आचार्य होने वाला, धर्मगुरु होने वाला परिभ्रमण से नहीं छूटता है, उसको क्या रह गया और क्या करने से ये छूटे, ये बात हमको ध्यान में लेनी है। इतना बहुत कुछ करने पर भी संसार नहीं मिटता, और कुछ करने से संसार मिटता है वो क्या, उस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और तभी हम इसके पीछे लगेंगे और तभी हमारा छुटकारा होगा। इस तरह से पांच वचनों में उन्होंने बहुत सी बातें कह दी हैं, पर ये प्राथमिक बात है। ये क्या है, इसमें शास्त्र की कोई तत्वज्ञान की सूक्ष्म बातें नहीं है, ये प्राथमिक बात है कि जिसको मोक्ष का मार्ग में प्रवेश करना है उनके लिए महत्वपूर्ण बात वो है कि किसी भी कोई आत्मज्ञानी पुरुष की खोज करके उसको सरेंडर हो जाए, अभिप्राय से, लेने देने की कोई बात नहीं है, अभिप्राय से सरेंडर हो जाए। तो क्या है कि अभिप्राय से सरेंडर होने से मोह तो उसी वक्त ढीला पड़ जाएगा, फिर वो सत्पुरुष उनको बताएगा कि देखो तुम्हारे में जो कमजोरी है, तुम्हारे में जो कमी है या विपरीतता है या जो कुछ भी है गड़बड़ी, वो उस प्रकार की है, उसका निदान भी वो करेगा और इसका इलाज भी वो करेगा, तब सेफ गार्ड हो जाओगा। इस तरह से खास बात प्रारंभ की है, तो किया है।